जय श्री राम। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं नितिन कश्यप और आज का शो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज एक ऐसा व्यक्तित्व मेरे साथ है जिसे आचार्य की उपाधि प्राप्त है। अनामय वैदिक गुरुकुल कोसानी उत्तराखंड में वो वैदिक आचार्य हैं, वैदिक साहित्य पढ़ाते हैं और यज्ञ अनुष्ठान वगैरह इनमें उनकी रुचि भी है, कलते भी हैं, कलता हैं इस चीज़ के, और अच्छी समझ रखते हैं इन सब चीज़ों के। इसके साथ साथ ज्योतिष में उनकी जिज्ञासा भी बहुत है और इसी जिज्ञासा की वजह से उन्होंने हमारे साथ कोर्स भी किया, प्रेडिक्टिव टेक्निक्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, और अभी नक्षत्र के क्लास में भी छात्र की तरह वो हमसे जुड़े हुए हैं, परंतु उनका अपनी फील्ड में, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा ज्ञान है। आज वो दिल्ली आए हुए थे तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा मौका है उनसे बात की जाए एक ऐसे विषय पर जिस विषय पर सारे छात्र चाहते हैं कि चर्चा हो। मैंने भी सभी से वादा किया है कि कभी ना कभी हम ऋषिकेश या किसी ऐसी जगह पे जाके उपाय के ऊपर हम एक वर्कशॉप, एक कार्यशाला करेंगे और बात करेंगे कि उपाय करने चाहिए या नहीं, और अगर करने चाहिए तो किस प्रकार के उपाय कहाँ लाभ देते हैं। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे आचार्य जी से। तो अब और समय ना लेते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा।
कुंडली से भाग्य तत्व देखते हैं, ज्योतिष की शाखा है,
एस्ट्रो लाइफ सूत्रस।
आचार्य कमलेश पांडे जी, जय श्री राम।
जय श्री राम सर। नमस्कार सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके साथ हूँ और कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो कमलेश भाई, सबसे पहले तो ये बताइए, लोग पूछते हैं कि उपाय करने चाहिए या नहीं, और अगर करने चाहिए तो किस तरह के उपाय आपने देखे हैं कारगर होते।
जी सर, उपाय तो करने चाहिए, अवश्य करने चाहिए। यहाँ पर जो सवाल है, सवाल ये है कि समस्या क्या है, उस समस्या के अनुसार हम क्या उपाय करें, क्योंकि मनुष्य जो जीवन है वो इतना आसान नहीं है। मनुष्य एक बहुत ही संवेदनशील प्राणी है, उसकी समस्याएं भी बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उपाय करें तो उसका लाभ अवश्य ही हमें मिलता है।
तो कमलेश भाई, पहले तो ये बताइए कि उपाय, जैसा अभी आप कह रहे हैं, किस किस तरह के उपाय होते हैं और उसको कैसे समझें।
सर, उपाय जानने से पहले हमें पता है कि हमारे जीवन के तीन स्तर हैं, अधिभौतिक, अधिदैविक, अधिआत्मिक। तो हम पहले बात करेंगे अधिभौतिक के बारे में। अधिभौतिक का मतलब है जो कुछ हमारा शरीर है, जो हमें दिखता है, जो वास्तव में हम भूखते हैं, जो जिस चीज़ को, वो हम अधिभौतिक शरीर से भूखते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई समस्या है, कोई बीमारी है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो हम उसको अधिभौतिक स्तर से यदि हम उसका उपाय करें तो हमें वहाँ पर उसका लाभ अवश्य मिलेगा।
तो ये अधिभौतिक स्तर से कैसे उपाय होता है, क्या चीज़ है इसके लिए?
इसके लिए जैसे ज्योतिष शास्त्र हमें हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया, उसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद का ज्ञान भी हमें दिया।
बहुत बढ़िया।
यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो हमें उसके लिए आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए, तो हमें उसका लाभ मिलेगा, उसको भी हम उपाय के तौर पर ही हम देखेंगे।
यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर देह में कोई परेशानी है, कोई रोग है, तो उसके निवारण के लिए ज्योतिषीय उपायों में सबसे पहले आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए।
जी सर, मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि यदि समस्या अधिभौतिक स्तर की है तो उपाय भी अधिभौतिक स्तर से ही किए जाने चाहिए।
बहुत बढ़िया।
चाहे उसमें चिकित्सा पद्धति कोई भी हो, तो हम उसके लिए अधिभौतिक स्तर के ही उपाय करेंगे तो वो अधिक कारगर सिद्ध होंगे।
ये दर्शकों को सुनना चाहिए कि देखिए, जो हमारे साथ व्यक्ति बैठे हैं, अच्छी समझ रखते हैं और यज्ञ अनुष्ठान करता है, वैदिक साहित्य पढ़ते हैं, उनका भी ये मानना है कि अगर शरीर से जुड़ी समस्या है, आप केवल उपाय कर रहे हैं और दवाई नहीं ले रहे हैं या चिकित्सा नहीं ले रहे हैं, तो उसका कोई विशेष लाभ नहीं होगा। आपको इसके साथ साथ अपनी चिकित्सीय औषधियाँ जो भी बताई गई है शास्त्रों में, उसका भी सेवन करना चाहिए। मैं सही बोल रहा हूँ कमलेश भाई?
जी सर, बिल्कुल।
अच्छा, इसके बाद जो दूसरा आपने बोला वो क्या है? देवीय
दूसरा स्तर है जीवन का, इससे एक स्तर और ऊपर का, वो है अधिदैविक स्तर। यदि कोई समस्या मानसिक है या कोई किसी से वाद विवाद की समस्या है, किसी भी प्रकार की ऐसी समस्या जहाँ पर विचारों में मतभेद है, जहाँ पर विचारों की अस्पष्टता है, मतलब समस्या मानसिक स्तर पर है, समस्या काम बनते बनते बिगड़ जाता है, हमें पता चलता नहीं कि काम समस्या कहाँ पर है, जिसका हमें कोई जड़ नहीं मिल पाती है कि समस्या कहाँ पर है, किसी चीज़ का हम रास्ता ढूंढना चाहते हैं, तो उसका वो स्तर अधिदैविक स्तर है। वहाँ पर यदि हम नवग्रह शांति करें या देवताओं की पूजा पाठ करें, वो वहाँ पर बहुत ही अच्छे से हमें उसका लाभ मिलता है।
कमलेश भाई की बात को अगर मैं दोबारा रिपीट करूं तो देवीय या दैव कृपा, मतलब हम कहते हैं ना भाग्य दुर्भाग्य, तो कमलेश जी कह रहे हैं कि जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे प्रयास करने के बाद भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है, दैव कृपा नहीं हो रही है, या वो जो अभी जैसा कहा कि मन मुटाव हो रहा है, प्रयास करने के बाद सफलता नहीं मिल रही है, उन जगह पर हम नवग्रह स्तोत्र और जो पूजा पाठ अनुष्ठान जैसा भी आपका धर्म आपको अपना आज्ञा दे, उसको याद करने से विशेष लाभ रहेगा। क्यों कमलेश जी, मैं
जी जी सर
सही समझ रहा हूँ?
जी सर।
ओके। अच्छा, तीसरा स्तर आपने क्या बताया?
तीसरा और सबसे उच्च जो जीवन का स्तर है, जहाँ से जीवन की शुरुआत होती है, वो है अध्यात्मिक स्तर। क्योंकि व्यक्ति का जीवन अपने से स्टार्ट होता है, अपने से शुरू होता है, तो वो अपने को जानने का स्तर है, अध्यात्मिक स्तर है। व्यक्ति की स्वयं की क्या स्तर है, वो क्या है व्यक्ति स्वयं में, वो जानना सबसे पहले जरूरी है। यदि व्यक्ति अध्यात्मिक स्तर पर मजबूत है, तो अधिदैविक अधिभौतिक स्तर में समस्याएं होने पर भी वो उसको आराम से झेल सकता है, उसके उसको मैनेज कर सकता है।
अभी जो जैसे कमलेश जी ने कहा कि आत्मिक स्तर पर अगर आप स्वयं अपने आप में इतने बलवान हैं कि परिस्थितियों का प्रभाव आने पर भी आप उसको झेल लेते हैं, शरीर पर कष्ट आने के बावजूद भी आपका मन इतना बली है, आपकी सोच इतनी बली है, आत्मबल इतना है कि उस समस्या को निकाल लेते हैं, तो वो स्तर सबसे ऊपर है जिसे आत्मिक स्तर बोलते हैं। अब मेरा सवाल कमलेश भाई ये है कि अगर वहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो क्या होगा? मतलब अगर कोई मान लीजिए कि सोच ही किसी व्यक्ति की नकारात्मक है, तो उस स्थिति में आप क्या उपाय बताएंगे?
जी सर, सोच में बात करते हैं सर, इसमें क्या है सर, जो हमारा मन होता है, जो विचारों का जो स्रोत है, जहाँ से व्यक्ति के विचार उत्पन्न होते हैं, उस विचारों के स्रोत में हमें जानना पड़ेगा कि जहाँ से स्रोत विचार उत्पन्न हो रहे हैं, समस्या कहाँ है
जी।
तो जो हमारा चेतन अवचेतन मन है, जो हमारा अवचेतन मन होता है, उसको हमें शुद्ध करना होता है। उसको शुद्ध करने का जो हमारे शास्त्रों में जो उपाय बताए गए हैं, हमारे उपनिषदों में है, हमारे वैदिक ग्रंथों में उसके बारे में बताया गया कि यदि व्यक्ति ध्यान का अभ्यास करता है, ध्यान करता है, तो ध्यान से क्या होता है, जो हमारे विचारों की शुद्धि होती है। तो अध्यात्मिक स्तर को अच्छा करने के लिए हमें अगर हम ध्यान करते हैं, तो वो बहुत ही अच्छा कारगर सिद्ध होता है।
सरल भाषा में बात करें तो आपने कहा अगर आत्मिक स्तर, अगर अपने आप से ही कोई परेशानी है, मन में कोई कुंठा है, सब कुछ चारों तरफ सही है, लेकिन आप उसको इंजॉय नहीं कर पा रहे, तो आपको मेडिटेशन का सहारा और अध्यात्म और चिंतन मनन और आत्म मनन करने की आवश्यकता है।
जी 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 सर,
एकाग्रता की आवश्यकता है। और अगर हम इससे मेडिटेशन के बाद आपने देवीय स्तर पे कहा कि प्रार्थना और नवग्रह स्तोत्र और पूजा पाठ, इनसे बड़ा फायदा रहता है।
जी सर, यदि हम इसको संक्षेप में कहें तो जो अध्यात्मिक स्तर होगा, इसमें हमें ध्यान के माध्यम से स्वयं को स्ट्रॉन्ग करना होगा, और अधिदैविक स्तर पर हमें भगवान की स्तुति करके, मंत्र का जाप करके हम उस स्तर को सही कर सकते हैं। और अधिभौतिक स्तर पर हम अगर हम ठीक अवस्था में, तो हम वास्तु सही वास्तु के अनुसार रहें, तो वो भी हमें बहुत बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। और साथ साथ में यदि हम कोई समस्या में हैं, शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो हम वहाँ पर आयुर्वेद का भी सहारा ले सकते हैं।
अच्छा चलिए, पहले तो आपने ये बताया, बहुत अच्छा है, मुझे लगता है दर्शकों को बहुत समझ में भी आया होगा। आपने कहा भौतिक जो शरीर से जुड़ी, देह से जुड़ी चीज़ें हैं, तो जो आसपास जितने मटेरियल देह से जुड़े हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करके, वास्तु अच्छा करके, अच्छे चीज़ों का खान पान करके, आयुर्वेद के माध्यम से और दवाइयों के माध्यम से अपने आप को ठीक करें। अब घूम फिर के एक प्रश्न और आ जाता है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि सर उपाय से कोई लाभ नहीं होता, उपाय क्यों करें, जो लिख दिया गया वो तो होना ही है, तो फिर हम उपाय करके क्या समय व्यर्थ कर रहे हैं, आपका क्या मानना है इसके बारे में?
सर यदि हम उपाय की बात करते हैं, तो मतलब हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने जब हमें ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान दिया, साथ ही साथ हमें जो है उन्होंने कल्प का ज्ञान भी दिया, कि ज्योतिष जो है हमारे वेदों का नेत्र कहा गया है, साथ ही हमें जो है जो कल्प शास्त्र दिए उसको हमें हाथ हाथों की संज्ञा दी गई।
बिल्कुल बिल्कुल,
जैसे हम आंखों से देखते हैं किसी भी समस्या को जान सकते हैं, उसी प्रकार से हम जब उस समस्या का समाधान भी हाथों से कर सकते हैं। तो मतलब कल्प को जो है हमारे शास्त्रों में हाथों की संज्ञा दी गई है, हाथ मतलब परिवर्तन, तो हम परिवर्तन भी कर सकते हैं शास्त्रों के अनुसार चले तो।
बहुत बढ़िया। अब बाकी दर्शकों के लिए बता दूं कि कमलेश जी ने क्या कहा है, शास्त्रों में वेदों के 6 अंग बताए गए हैं जो काफ़ी फेमस हैं, उनमें जहां ज्योतिष को नेत्र कहा गया है, वेदांग में इसको नेत्र की संज्ञा दी जाती है, व्याकरण को जिह्वा से जोड़कर देखा जाता है, वैसे ही कल्प को हम हाथों से जोड़ते हैं। अब कल्प शब्द के अर्थ पर जाएं तो इसके कई अर्थ होते हैं, लेकिन इनमें जो प्रमुख अर्थ हैं, एक तो है कृत्य, आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, शायद इसी वजह से ही वेदों में इसे वेद के हाथ कहा गया कि आप किस तरह के कल्प में इन्वॉल्व होते हैं, अब इस बारे में भी हम कमलेश जी से बात करेंगे। इसके अलावा इसको काल की संज्ञा भी दी जाती है, काल के एक मापक की तरह कल्प को यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर कमलेश भाई उसे कह रहे हैं परिवर्तन भी कर्मों के द्वारा हो सकता है, किसी चीज़ को बदलना है तो फिर आपको कर्म करना पड़ेगा, तो वो भी शास्त्रों में निहित है, बताया गया है कि उससे लाभ होगा। अब थोड़ा कल्प के बारे में जानकारी दीजिएगा कमलेश भाई कि क्या होते हैं कल्प, कैसे लोग इसको समझें।
कल्प के बारे में एक शब्द है वो बहुत प्रचलित है, बोलते हैं कि इसका तो कायाकल्प हो गया। कायाकल्प का मतलब ही काया का मतलब होता है शरीर होता है, कल्प मतलब परिवर्तन, इसका शरीर ही परिवर्तन हो गया, यानी कि इसका सब कुछ ही परिवर्तन हो गया।
बहुत बढ़िया।
तो मतलब कल्प को हमने परिवर्तन से जोड़ा, कल्प का अगर हम जो हमारा वेदांग कल्प है इसमें हमने इसको परिवर्तन के लेकर के इससे संबंध जोड़ा हुआ है।
बहुत बढ़िया।
तो इस कल्प को भी अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसके भी 4 अलग अलग भाग हैं। पहला भाग है स्रोत सूत्र बोलते हैं, दूसरा जो स्रोत सूत्र है उसमें वैदिक यज्ञों का विधान बताया गया है, जो जिनका अधिकतर हम रामायण में देखते हैं, महाभारत काल में देखते हैं, जो बड़े बड़े यज्ञ होते थे उनका विधान स्रोत सूत्रों के अंतर्गत किया गया है।
अच्छा।
दूसरा आता है धर्म सूत्र, धर्म सूत्र के अंतर्गत जो है जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था थी कि जो हमारे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम, ये कैसे चलेंगे, इनकी क्या व्यवस्था होगी, जो 4 वर्ण व्यवस्था है उनका विस्तार से वर्णन है, तो और राजा का क्या कर्तव्य है, प्रजा का क्या कर्तव्य, इन सारे कर्तव्यों को धर्म सूत्रों के अंतर्गत हमें विस्तार से बताया गया है कि हम उनको करेंगे तो किस तरह से समाज में परिवर्तन आएगा। तीसरा होता है गृह सूत्र, इसके अंतर्गत एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति विशेष उसके जीवन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि संस्कार हैं, जो 16 संस्कार हैं वो कैसे करें कब करें, इनका विस्तार से वर्णन है, और व्यक्ति प्रतिदिन एक व्यक्ति को एक गृहस्थ को क्या क्या कार्य करने चाहिए, उनके से संबंधित जो 5 महायज्ञ हैं उनके बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है, तो उन 5 महायज्ञों को का अनुसरण करते हुए व्यक्ति किस तरह से अपना जीवन को परिवर्तित कर सकता है, उन्नति दे सकता है, इसका विस्तार से वर्णन गृह सूत्र में दिया गया है। चौथा है शुल्ब सूत्र, शुल्ब सूत्र अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ में जाते हैं तो शुल्ब का मतलब होता है नापना, जो भी यज्ञों की जो हम विधान होते हैं, मंडप होते थे कैसे बनने हैं, और जो कुछ भी चीज़ इस संसार में है, रचना है, उसका नाप जोप कैसे करेंगे, ये सब शुल्ब सूत्र के अंतर हमें मिलता है।
आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले जब हमारा डिस्कशन था कि ज्योमेट्री जो हम जिसे ज्यामिति बोलते हैं वो ज्यामिति के लिए भी उसके बारे में जो जानकारी मिलेगी वो यही मिलेगी।
जी सर, यदि हम जो हमारे शास्त्रों को देखते हैं कि ज्यामिति कहाँ से शुरू हुई, कहाँ इसका सबसे पहले हमें मिलता है, तो जो हमारे यज्ञों की वेदियाँ बनती थी वो एक विशेष बनती थी, बहुत सारे उसमें हमें गणित करना पड़ता था, बहुत सारे एंगल देखने पड़ते हैं कि कितनी कोणी कितना कि कौन सा कोण कहाँ पर लेंगे, कौन सा कोण कहाँ पर लेंगे, तो इसमें बहुत ही विस्तार से जो है ज्यामिति को समझाया गया है हमारे शुल्ब सूत्र के अंतर्गत।
जी जी, तो अभी आप लोगों ने जाना कि 3 स्तर पर उपाय होते हैं, तीनों के लिए अलग अलग तरह की रेमेडी है, फिर अभी वही दैवीय जो स्तर है उस पर किस उपाय से कितना लाभ होगा वो एक अलग विषय है, वो बहुत गुड विषय हो जाएगा और मेरे ख्याल से एक सेशन में पूरा भी नहीं होगा और फिर वो हमें वर्कशॉप भी देखनी है तो उसमें भी बोलना पड़ेगा, तो वो तब हम उसके बारे में डिटेल में जाएंगे। दूसरा, आपने चिकित्सा के बारे में कहा, ये भी बहुत अच्छा रहा। कल्प के बारे में हमें जानकारी दी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। मेरा भी ज्ञानवर्धन हुआ, अच्छे छात्र को पढ़ाने से और जिसको पहले से ज्ञान हो इससे भी बहुत लाभ रहता है। चलिए अब कुछ और बात करते हैं, मंत्र जाप की बात करते हैं। थोड़े दिन पहले आप ही के आश्रम जा रहे थे, मैं उनका नाम भूल गया, क्या नाम था
जी? विवेक वैद्यनाथन।
हाँ, विवेक वैद्यनाथन जी बहुत ही सज्जन पुरुष थे, हमारा एक YouTube पर उनके साथ वीडियो भी अपलोडेड है जहाँ उन्होंने मंत्र के बारे में बताया कि मंत्र की क्या इम्पोर्टेंस है। अच्छा, तो एक आप बताइएगा, कई लोग पूछते हैं कि मंत्र तेज पढ़ने चाहिए या मन में पढ़ने चाहिए, इसका क्या, कैसे करते हैं इसको, आपको क्या लगता है?
यदि हम मंत्र पर जाते हैं, मंत्र शब्द क्या है, उसका उसकी परिभाषा क्या है, तो जो हमारा एक वेदांग है निरुक्त है, वो हर एक शब्द की निरुक्ति करता है
जी,
मतलब उसका परिभाषा बताता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो जो मंत्र शब्द की जो निरुक्ति है उसका मतलब है मननात् त्रायते इति मंत्रः, यानी कि जो जिसके जाप से, जिसके करने से हमें हमारा त्राण हो, यानी कि हमारी रक्षा हो, उसे हम मंत्र कहते हैं।
अच्छा,
ये मंत्र की परिभाषा है, जिसको करने से हमें त्राण मिले, हमारी रक्षा मिले, वो मंत्र है। मंत्र को करें कैसे, तो हम देखें तो मंत्र मननात मंत्र, मन में करने से वो मंत्र होता है। यदि किसी चीज का हम मन ही मन उसका अभ्यास करते हैं तो उसको हम मंत्र बोलते हैं। जो जिह्वा से बाहर आ गया, जो स्पष्ट हो गया, जो दूसरे के कानों तक पहुंच गया, वो तो फिर पाठ हो गया,
वो पाठ हो गया। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा सब। उन्होंने कहा कि जो मन ही मन रहे, हमने देखा है कि लोग गुरु से दीक्षा लेते हैं, गुरु उनको मंत्र देते हैं और वो मन ही मन उस पाठ को सालों तक करते हैं, किसी के साथ शेयर करने को ही मना किया जाता है। आपने भी यही कहा कि वो अगर बाहर आ गया तो फिर वो पाठ हो गया, वो स्तुति हो गई, वो फिर वो मंत्र नहीं रहा, मंत्र
जी सर। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में जो है मंत्रों की श्रेणी अलग है और पाठों की श्रेणी अलग है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है इस बात से काफ़ी लोगों का ज्ञानवर्धन होगा कि हर कोई मंत्र पाठ, ये दो चीज़ें डिफरेंट है और दोनों को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है।
जी सर, जी जी। और फिर इसमें भी क्या है, अगर हम और थोड़ा गहराई में जाते हैं मंत्रों को लेकर के, मंत्र हों या स्तुति हों या पाठ हों, देवी हों, देवताओं के, तो मंत्र के साथ में उसका एक विनियोग होता है। उस विनियोग में, विनियोग हमें बताता है कि इस मंत्र का मतलब क्या है, इस मंत्र में कौन सा गुण विशेष है, और इस मंत्र को हमारे किस ऋषि ने देखा, किस ऋषि को हमारा इसका अनुभव हुआ इस मंत्र का, और इस मंत्र में कौन सा छंद है,
बिल्कुल,
यानी कि हम कैसे इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, मन ही मन या फिर पाठ के रूप में, तो उसका भी एक विधान है, वो किस छंद में करेंगे और किस ऋषि ने उस मंत्र को देखा, उस मंत्र में कौन सा गुण है, मतलब कौन सा देव तत्व उस मंत्र में है,
अरे वाह,
और किस उद्देश्य से हम उस मंत्र को कर रहे हैं, ये चार चीजें विनियोग के अंदर रखी जाती हैं।
बिल्कुल, जैसे अर्गला स्तोत्र पढ़े या उसमें भी शायद शुरुआत में कुछ इसी प्रकार की लाइन आती है ना?
जी, हम अगर हम दुर्गा सप्तशती देखते हैं पूरा, तो उसमें देवी के तीन चरित्र हैं, और अध्याय उसमें 13 अध्याय हैं।
बिल्कुल,
आप देखेंगे तो उसमें केवल आपको तीन जगह विनियोग मिलेगा, पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में और पांचवें अध्याय में। मतलब जो पहला अध्याय है वो महाकाली का चरित्र है,
बिल्कुल,
दूसरा और तीसरा अध्याय, दूसरा तीसरा चौथा अध्याय वो महालक्ष्मी का अध्याय है, और फिर पांचवे से आगे पूरा ये महासरस्वती का चरित्र है। तो इसलिए इसमें तीन जगह यहाँ पर विनियोग आया हुआ है। तो हम अभी किस देवी की उपासना कर रहे हैं और किस ऋषि ने इसको ज्यादा विस्तार से अपने अंदर ग्रहण किया,
अरे वाह,
और उसको करने से क्या होगा, वो लास्ट में विनियोग दिया गया, पाठे विनियोग बोला गया कि इसमें कि किस चीज से इसमें क्या करना है, वो हमें पाठे विनियोग। हालांकि पुस्तकों में जपे विनियोग लिखा होता है, लेकिन वहां पर हम, क्योंकि अभी वर्तमान समय में उसका पूरा जाप करना इतना आसान नहीं हो पाता है, तो अधिकतर व्यवहार में उसका पाठ के रूप में लेते हैं।
आप सही कह रहे हैं, अगर मुझे जैसे दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय याद है, तो वहाँ वो क्या कहते हैं, उनके वध के लिए ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, माँ काली को याद करते हैं, कि विष्णु जी को जगाएं और उसके बाद वो उनका वध करते हैं।
जी सर, वहाँ पर पहले अध्याय में महाकाली देवता है, दूसरे में महालक्ष्मी देवता है, तीसरे में महासरस्वती देवता है। तो इनकी कौन सा देवीय तत्व, कौन सा देवी गुण विशेष उन अध्यायों में व्याख्यान किया गया है, उसका वहाँ पर वर्णन किया गया है।
अब नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड ना ये विनियोग भी मैं बड़े ध्यान से पढ़ूंगा। मैं पहले क्या करता, पढ़ने के लिए पढ़ते तो हैं पर इसको समझते नहीं है इसमें क्या लिखा है, तो इसके ऊपर कभी अलग से भी बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसा विषय है कि इस पर तो बहुत चर्चा हो सकती है। हम मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो पाठ कर तो रहे हैं, पाठ की कोशिश भी रहती है कि मंत्रों को समझ पाएँ कि उनका जो जो श्लोक लिखे हैं उसका अर्थ क्या है, लेकिन ये जप विनियोग और उसके बाद मार्कंडेय वाक्य, उसके बाद कहानी आरंभ होती है। तो जैसे आपने बताया, आगे से मैं इसके बारे में ज़रूर पढ़ के बैठूंगा और तब आपसे इस बारे में बात करूंगा। अभी मुझे एक चीज़ और बताइएगा, पूजा का विधान, हम कहते हैं कि पूजा इस स्वरूप में ही होनी चाहिए, इसके अलावा और तरीके से नहीं। कई लोग पूजा करते हुए डरते हैं। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बताऊँ, दिल्ली में तो ऐसा है कि सर गलत हो गई तो इसका उल्टा प्रभाव हम पर ना आ जाए। तो आपका क्या मत है इस बारे में कि पूजा यज्ञ इनका कैसे करना चाहिए, क्या इसका है?
सर जब हम पूजा की बात करते हैं तो यदि हम अपनी भक्ति के लिए, ईश्वर की प्रीति के लिए हम पूजा कर रहे हैं, वहाँ पर विधान की उतनी आवश्यकता नहीं है। जो आपके भाव हों उन भावों को आप किसी भी रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं, अपने ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप किसी भी भाव में उसको आप व्यक्त कर सकते हैं। आप गीता में बोलता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो आप कैसे भी पत्र चढ़ा करके, फूल चढ़ा करके, फल दे करके, पानी की बूंद चढ़ा करके आप उसको ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। वहाँ पर कोई समस्या नहीं है जब आप निष्काम भाव से ईश्वर की प्रीति के लिए आप पूजा कर रहे हैं।
जी 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 जी,
आप चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं
जी। पर अगर सकाम हो जाए तो मतलब किसी काम से कर रहे हैं,
यदि हम किसी उद्देश्य विशेष को ध्यान में रखते हुए कोई यज्ञ कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें जो शास्त्रों में जो बताई गई उस विधि को भी का भी अनुसरण हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी विशेष एक देवी गुण को अपने अंदर जागृत करना चाहते हैं तो उसको बताने के लिए शास्त्रों में एक विशेष विधान भी बताया गया है कि आप किस रास्ते से चलेंगे, कहाँ पहुँचेंगे। जब हम ईश्वर आराधना करते हैं तो हम वहाँ पर हम परमेश्वर की पूजा करते हैं
जी,
कि सब अंत में वहाँ मिलना है। लेकिन जब हमें किसी एक विशेष चीज़ की आवश्यकता होती है, हमें चाह होती है कि हमें ये मिल जाए, तो हमें देवता के उस गुण विशेष की हमें जागृति करनी होती है, क्योंकि ईश्वर सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, सब कुछ उसके पास में है। आवश्यकता कि हमें उनसे क्या चाहिए, तो हम उस देवता भगवान के उस गुण की अगर हम आराधना करेंगे, उस विशेष पद्धति से आगे बढ़ेंगे, तो ही हमें उस गुण की विशेष की प्राप्ति होगी।
बहुत बढ़िया बात आपने कही। मैं जो समझा उसका ये जो मैं अर्थ निकाल पाया कि परम सत्ता को जब आप निर्गुण स्वरूप में देखते हैं या आप ऐसे स्वरूप में देखते हैं कि जो मैं पाठ कर रहा हूँ वो उस ऊपर वाले के लिए है, मतलब उसको याद कर रहा हूँ, उसके साथ जो मेरा भक्ति भाव जुड़ा हुआ है, तब आपको विधान की इतनी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब आप किसी एक स्पेसिफिक देवता की या किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए पूजा कर रहे हैं कि भैया ये मेरा काम पूरा हो जाए, और जब हम उनको याद करें, तो उसके लिए पूरा तरीका है कि आप ऐसे याद करेंगे तो उस शक्ति को आप जागृत कर पाएंगे या उसके साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ? यही
जी, जी सर जी सर। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए आपको संतान की चाह है,
राइट,
तो आप संतान गोपाल का जब मंत्र का जाप करेंगे तो उसका एक अपना अलग विधान है कि कैसे करेंगे। और उसके विपरीत यदि आप बीमार अवस्था में है, आपको महामृत्युंजय का जाप करवाना है, तो उसका विधान अलग है। तो उस विधान को जानने वाले और उस विधि को जब काज हम अनुसरण करेंगे तभी हमें उस चीज प्राप्त हो पाएगी।
बहुत बढ़िया। नहीं, आई होप दर्शकों का बहुत इससे ज्ञानवर्धन हुआ हो। समय भी अभी पूरा हो रहा है, मेरी भी क्लास का समय होने वाला है, अब अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो कमलेश भाई, आप दिल्ली आए और इतनी बात हुई हमसे, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस तरह अगली बार भी आओगे तो बताकर आना, और प्रयास रहेगा कि अपने दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए, क्योंकि ये तो पॉडकास्ट पे जाने वाला है, तो उनको कुछ और नई जानकारी धर्म के बारे में, उपाय के बारे में हम इस माध्यम के द्वारा दे पाएं।
जी सर, ये तो हमारा सौभाग्य है कि जो हमें आपका सहयोग और सानिध्य मिलता है, इसके लिए आपका भी धन्यवाद सर।
लेकिन एक चीज़ चलते चलते फिर मैं आपसे ही पूछूंगा, कि अभी जैसे क्लासेस चल रही हैं और ये सब है, आपका क्या अनुभव रहा? आप तो खुद बहुत ज्ञानी बंदे हो।
सर सच कहूँ तो आपसे मिलने से पहले 2-3 साल पहले ज्योतिष का उतना अच्छा ज्ञान नहीं था मुझे, जितना ज़रूरी होता है एक पंडित के लिए, एक आचार्य के लिए उतना ही था, लेकिन एक फलित आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला फलित को लेकर।
मतलब जब पता है क्या है, मैं क्यों पूछ रहा हूँ आपसे, आपको बताता हूँ कि जिस व्यक्ति को अपने विषय की अच्छी खासी समझ हो, अगर वो ज्योतिष में आया है और मैं कुछ हद तक भी अगर उसको संतुष्ट कर पाया हूँ, तो ये मुझे अपने लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है कि भाई मैंने इस व्यक्ति को जो इतनी नॉलेज रखते थे, इतनी समझ रखते थे, उनको कुछ दे पाया। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। खैर ये पता नहीं ये पार्ट हम स्पॉटिफाई में डालेंगे कि नहीं, मैं तो बस वैसे व्यक्तिगत रूप से पूछा था। बाकी आप अपना ध्यान रखें, परमात्मा ने चाहा तो जल्दी मिलेंगे। जय श्री राम।
जय श्री राम।
आशा करता हूँ कमलेश पांडे जी के साथ हुई ये चर्चा आपको पसंद आए। यदि पसंद आए तो इस पॉडकास्ट को फॉलो करना मत भूलिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा ये पॉडकास्ट सुनने के बाद। इससे संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न भी हो तो आप हमें भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा यूट्यूब के किसी भी वीडियो के कमलेश पांडे जी का नाम लिखते हुए। तो मेरा प्रयास रहेगा कि अगली बार जब भी हम मिले तो इन प्रश्नों का भी उत्तर आपको दे पाए। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।